ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प विकसित और विकासशील देश ग्लोबल साउथ की स्थिति पर बल देते हुए ब्राजील के रियो डी जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक संघर्षों का खाद्य, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख करते हुए ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को प्राथमिकता देने का आग्रह G20 देशों से किया। भुखमरी और निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक समावेशन पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने वैश्विक संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील की सराहना भी की। ये शिखर सम्मेलन 80 राष्ट्रों के समर्थन से निर्धनता और भुखमरी से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ का साक्षी बना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया। ये पहल खाद्य सुरक्षा और सामाजिक उन्नयन प्रयासों के प्रति भारत के पूर्ण सहयोग की पुष्टि करती है। भारत की घरेलू उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता से उबारा गया है। देश में 80 करोड़ नागरिकों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं 55 करोड़ नागरिकों को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। श्री मोदी ने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता सहित वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को भी साझा किया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किर स्टार्मर ने अगले साल की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के बारे में बातचीत को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा कि भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता इंग्लैंड में नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगा और देश भर में विकास और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की और भारत चीन सीमा पर हाल ही में हुई सैन्य वापसी में हुई प्रगति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक स्थिति पर भी बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। श्री शाह आज गुजरात में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस महीने की 24 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से 20 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। झारखंड में दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवम्बर को होगी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता 492 थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बवाना तथा आनंद विहार में वायु गुणवत्ता 500 रही। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच आज चीन और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 2:15 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।